हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 40 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवतु वर्गीनया कल्पिता श्रीमद् भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो न परा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 5 जिसका शीर्षक है मैत्रेय से विदुर की वार्ता। मैत्रेय मुनि विदुर जी को उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए सृष्टि की रचना के विषय में बताते हैं और जब सारे भौतिक तत्व उत्पन्न हो जाते हैं उसके उपरांत वे कहते हैं कि उपर्युक्त समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के शक्तियाविष्ट अंश है। मतलब जितने भी भौतिक तत्व हैं उनके नियंत्रण करने वाले देवता हैं और वो सब क्या है, भगवान के शक्ति आविष्ट अंश हैं और वे बहिरंग शक्ति के अंतर्गत नित्य काल द्वारा देह धारण करते हैं और भगवान के अंश हैं। चूंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्वों के विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे अतः उन्होंने भगवान की मनोहारी स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की। और भगवान ने क्योंकि प्रत्येक देवता को बहुत सारे कार्य बाहर सौंपा था लेकिन उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं था। वास्तव में जीव असमर्थ है कोई भी कार्य करने के लिए, इसलिए जब भी हमारे ऊपर कोई कार्यभार हो, कोई भी कार्य हो, भौतिक हो, भौतिक जगत के अनेक अनेक हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और देवताओं से हमें सीखना चाहिए कि वो भले देवता हैं, भगवान के अंश हैं, लेकिन फिर भी जैसे उनको ये कार्यभार सौंपा गया तो उन्होंने क्या प्रारंभ की, भगवान की मनोहारिणी स्तुति। इस तरह से स्तुति करने से जीव के सारे कार्य निर्विघ्नता के साथ परिपूर्णता के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। अगर कोई भी कार्य जीव अपने सामर्थ्य के बल पे करता है तो उसमें अवश्य विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, कार्य पूर्ण भी नहीं होता, और सबसे बड़ी बात कि उसका फल भोगना पड़ता है। लेकिन यदि कृष्ण को केंद्र बनाकर कोई कार्य किया जाता है तो वो निर्विघ्नता के साथ संपन्न भी होता है, और वो कार्य ही भक्ति बन जाता है, क्योंकि वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है। तो देवता भगवान की अत्यंत ही सुंदर स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागत के लिए छाते के समान हैं, जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं। अतएव हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। नमामते देव पदारविंदम प्रपन्न तापोप क्षमा तपर पत्रम, कि आपके इन छाते सदृश चरणों को, जो कि जीव के समस्त दुखों को समाप्त कर देते हैं, दुखों के कठिन वातावरण को जीव के निकट आने नहीं देते, जो जीव भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, दुख बहुत दूर चले जाते हैं। तो ऐसे भगवान के चरणों को देवतागण प्रणाम करते हैं। उसके बाद आज श्लोक नंबर 40 में देवता कहते हैं, दातर यदस्मिन् भव ईश जीवा तापत्रयेण विहतान शर्म आत्मन लभन्ते भगवान स्तवांग्री छायां सविद्या मत आश्रयेम। दातर यदस्मिन् भव ईश जीवा तापत्रयेण विहतान शर्म आत्मन लभन्ते भगवंस्तवंग्री छायां सविद्या मत आश्रयेम। दातर यदस्मिन् भव ईश जीवा, दातर हे पिता, यत क्योंकि अस्मिन् इस भवे संसार में, ईश हे ईश्वर, जीवा यानी ये जीव, तापत्रयेण विहता न शर्म, ताप अर्थात कष्ट, त्रयेण अर्थात तीन प्रकार के, अभिहिता सदैव, न नहीं शर्म सुख। संसार में जीव सदैव तीन प्रकार के कष्टों को तो सहता रहता है, परंतु उसके जीवन में कभी कोई सुख नहीं आता। आत्मन लभन्ते भगवन स्तवांग्री, आत्मन आप लभन्ते प्राप्त करते हैं भगवान, हे भगवान, तव तुम्हारे, अंग्री यानी छाया, चरणों की छाया, और स विद्याम ज्ञान से पूर्ण, अतः प्राप्त करते हैं आश्रय यानी शरण। अनुवाद, हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे तीन प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। अतएव वे आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण है, और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। देवतागण कहते हैं, क्योंकि संसार में तीन प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तो जीव को चाहे कितनी ही सुव्यवस्थित और कितनी ही लग्जरियस लाइफ संसार में मिल जाए, लेकिन फिर भी वो इन दुखों से तब तक नहीं छूट सकता जब तक कि भगवान के आत्मन लभन्ते भगवंस्तवंग्री, भगवान के चरण कमलों की शरण को ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक जीव सदैव दुखी रहेगा। न शर्म तापत्रयेण विहता न शर्म, सुख की कोई संभावना नहीं है। सुख कभी जीव को प्राप्त हो नहीं सकता जब तक वो भगवान की चरणों की शरण ग्रहण नहीं करता। तो यहाँ पर देवता गण कहते हैं कि वो जो सुख प्राप्त करना चाहते हैं वो आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, जो ज्ञान से पूर्ण हैं वही आपकी शरण ग्रहण करते हैं, और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति में सेवा की विधि ना तो भावनात्मक है ना लौकिक, यह सत्य का मार्ग है जिससे जीव तीन प्रकार के दैहिक, वैदिक तथा भौतिक दुखों से छुटकारा पाने का दिव्य सुख प्राप्त कर सकता है। भौतिक जगत द्वारा बद्ध कोई भी जीव, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो या पक्षी, उसे आध्यात्मिक यानी शारीरिक या मानसिक, आदि भौतिक यानी जीवों द्वारा प्रदत्त और आदि दैविक अर्थात दैवी उत्पातों के फलस्वरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसका सुख बद्ध जीव के कष्टों से मुक्त होने के लिए है। उसका सुख बद्ध जीव के कष्टों से मुक्त होने के लिए कठिन संघर्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता, किंतु उसकी रक्षा का एक ही उपाय है और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। यह तर्क कि उचित ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य भौतिक कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता, असंदिग्ध रूप से सत्य है, किंतु भगवान के चरण कमल दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, अतएव उनके चरण कमलों को स्वीकार करने से उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसकी व्याख्या हम प्रथम स्कंद में 1.2.7 में कर चुके हैं। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी भी इसी बात को समझा रहे हैं कि भगवान की भक्ति करना कोई भावनात्मक कार्य नहीं है कि बस कोई भावना में आकर भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान को भोग अर्पण कर रहा है, भगवान की आरती कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है। ये कोई कोई खेल नहीं है, ये कोई भावनात्मक या लौकिक कार्य नहीं है, ये जीव की वास्तविक स्थिति है। जीव तब तक भटक रहा है, दुख सह रहा है, जब तक कि वो भगवान की सेवा करना प्रारंभ नहीं करता, जब तक भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ना प्रारंभ नहीं करता। तो जीव के कष्ट त्रय ताप तभी तक समाप्त नहीं होते जब तक कि वो भगवान के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ता। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि भाई जीव का के दुख तो तभी समाप्त होंगे जब उसे उचित ज्ञान प्राप्त होगा। जब जीव को ज्ञान ही प्राप्त नहीं होगा तो भला वो कैसे दुखों से छूटेगा। तो भगवान यहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे श्री प्रभुपाद जी कि इसकी व्याख्या तो पहले ही बता दी गई, क्या कि भक्ति जो है वो ज्ञान और वैराग्य की जननी है, और जहाँ भक्ति आ जाती है, जो जीव भगवान के चरण कमलों की भक्तिमय सेवा प्रारंभ कर देता है, तो भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य स्वतः उसके साथ फ्री गिफ्ट है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम्। भगवान वासुदेव की भक्ति में ज्ञान का अभाव नहीं है। वे भक्त के हृदय में से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का भार अपने ऊपर ले लेते हैं, उसकी पुष्टि उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में की है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं ये नमाम उपयान्ति ते। तो भक्ति करना ही जीव का एकमात्र स्वभाव है, एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र आधार है और एकमात्र साधन है। उसके उपरांत उसको जिस जिस वस्तु की आवश्यकता है, बुद्धि वो स्वयं देंगे, भौतिक वस्तु जो भी चाहिए वो भी स्वयं देंगे, और उसके साथ भगवान ने तो यह प्रण कर दिया, अनन्य चेता सततम योमा स्मृति नित्यशः तस्याम सुलभ पार्थ। मैं उसे सुलभता से प्राप्त हो जाऊंगा, क्योंकि अनन्य चिंतयंतो माम ये जना परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। उसके योग और क्षेम का मैं स्वयं रक्षण करूंगा, जो कमी होगी उसे मैं पूरा करूंगा, जो होगा उसकी मैं सुरक्षा करूंगा। तो इसीलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अनुभव जन्य दार्शनिक चिंतन मनुष्य को भौतिक संसार के तीन कष्टों से छुटकारा नहीं दिला सकता। भगवान की भक्ति में समर्पित हुए लगे बिना ज्ञान के लिए प्रयत्न करना मूल्यवान समय का उपव्यय है। कि कोरा ज्ञान जिसमें भगवान की भक्ति का लेश मात्र नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने समय का नष्ट करना है। आगे देवता गण कहते हैं, मार्गंतियत्ते मुखपद्मनीडे शनीडे चंदा सुपर्णा संदा सुपर्ण ऋषयो विविक्तय यस्यागमर्षो दशरीत्वराया पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्ना मार्गंतियत्ते मुखपद्मनीडे छंदा सुपर्ण ऋषयो विविक्तय यस्यागमर्षो दशरीत्वराया पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्ना मार्गंति यत्ते मुख पद्मनीडे। मार्गंति मतलब खोज करते हैं, यत जिस तरह ते तुम्हारे तुम्हारा मुख पद्म कमल जैसा मुख नीडे ऐसे कमल पुष्प की शरण में आए हुओं के द्वारा छंद सुपर्ण ऋषयो विविक्त छंद अर्थात वैदिक स्तोत्र सुपर्ण अर्थात पंखों से ऋषय यानी ऋषिगण विविक्त है निर्मल मन में यस्य जिसका अघमर्ष उद अर्थात जो पाप के सारे फलों से मुक्ति दिलाता है सरित अर्थात नदियां वराया अर्थात सर्वोत्तम पदम पदम प्रत्येक कदम पर तीर्थ पद अर्थात जिसके चरण कमल तीर्थ स्थान के तुल्य है प्रपन्ना अर्थात शरण में आए हुए। अनुवाद, भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं। निर्मल मन वाले महर्षिगण वेदों रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में शरण लेकर पद पद पर आपके शरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, परम हंसों की तुलना उन राजहंसों से की जाती है जो कमल की पंखुड़ियों में अपने घोंसले बनाते हैं। भगवान के दिव्य शारीरिक अंगों की उपमा सदैव कमल के फूल से दी जाती है क्योंकि भौतिक जगत में कमल का फूल सौंदर्य की पराकाष्ठा है। अब यहाँ एक बात तो फिर भी समझने की है कि भगवान की सुंदरता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कमल भगवान की सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकता, परंतु व्यवस्था क्या है हमारे पास कि हमारे पास इस भौतिक जगत में कमल ही सुंदरता की पराकाष्ठा है। तो जब उपमा देने का समय आता है तो फिर हमेशा भगवान के अंगों की उपमा कमल के साथ दी जाती है। कमल के फूल अत्यंत ही सुंदर होते हैं। संसार के समस्त सबसे सुंदर वस्तु वेद या श्रीमद् भगवत गीता है क्योंकि उनमें स्वयं भगवान ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। परमहंस अपना घोंसला भगवान के कमल सदृश मुख पर बनाता है और वह सदा उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर शरण खोजता है जिन तक वैदिक ज्ञान के पंखों द्वारा पहुंच जाता है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं जैसा कि श्लोक में लिखा गया है कि जो परम हंस होते हैं वो सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं कि वो भगवान के घोंसले की, भगवान इसका मतलब क्या है? देखो, परमहंस अपना घोंसला भगवान के कमल सदृश मुख पर बनाता है और वह सदा उनके चरण कमलों की शरण खोजता रहता है। जिन तक वैदिक ज्ञान के पंखों द्वारा पहुंचा जाता है, चूंकि भगवान समस्त उद्भावों के आदि उद्भाव स्तुत्र हैं, अतः वैदिक ज्ञान से प्रकाशित बुद्धिमान जन भगवान की शरण उसी तरह खोजते हैं जिस तरह अपने घोंसलों से दूर गए पक्षी विश्राम करने के लिए पुनः अपना घोंसले की खोज करते हैं। समस्त वैदिक ज्ञान भगवान को समझने के लिए है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में कहा गया है, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। बुद्धिमान जन जो हंस सदृश हैं, सभी तरह से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और विभिन्न दर्शनों के विषय में व्यर्थ का निश्चय करते हैं और हमारी क्षमा और वे विभिन्न दर्शनों के विषय में व्यर्थ का चिंतन करते हुए मानसिक धरातल पर नहीं मंडराते हैं। यानी यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते कि हर एक ज्ञान का वास्तविक अर्थ, वेदों का वास्तविक अर्थ है भगवान को जानना। क्यों? इसी तरह वेदों में कहा गया, शास्त्र गीता में कहा गया, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। तो बुद्धिमान जन जो हंस सदृश हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो हंस की तरह हैं, जैसे परम हंस, सभी तरह के से भगवान की ही शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो शास्त्र के इस दिव्य रहस्य को जान चुके हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करना ही जीव का एकमात्र लक्ष्य है और वे विभिन्न दर्शनों के विषय में व्यर्थ का चिंतन करते हुए मानसिक धरातल पर नहीं मंडलाते। फिर वो ये नहीं कहते, अच्छा फिर ऐसा क्यों है, भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो ये भौतिक चिंतन नहीं करते हैं, लेकिन वो जान गए हैं कि कृष्ण की शरण ग्रहण करने से ही जीव का उद्धार हो सकता है। इसलिए भगवान के विषय में सब कुछ समझ पाना संभव ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण को हम पूरी तरह से समझ जाएंगे उसके बाद सरेंडर करेंगे, नहीं। एक बारी क्या हुआ कि एक बहुत ही शुद्ध वैष्णव जो थे वो भगवत कथा कर रहे थे और वो वैष्णव जो है वो वृंदावन में कथा कर रहे थे और बहुत ही गाढ़ी संस्कृत में बीच बीच में बोल रहे थे। तो वृंदावन की एक भोली भाली गोपी वहाँ पर बैठकर वो कथा सुन रही थी। तो एक दूसरे भक्त बैठे हुए थे जिनको थोड़ी थोड़ी कथा समझ में आ रही थी, क्योंकि कथा बहुत ही शुद्ध संस्कृत में बहुत ही सुंदर शब्दों में वो कथा का विस्तार कर रहे थे पंडित जी जो वैष्णव थे। तो एक भक्त थे, उनसे रहा ना गया और उस भोली भाली सी गवारन से पूछ बैठा, मैया ये जो संत व्याख्या कर रहे हैं इतना गूढ़ रहस्य भगवान की लीला का और इतनी गूढ़ संस्कृत भाषा में कर रहे हैं, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या तुमको ये समझ में आ रहा है कि वो क्या बता रहे हैं? तब उस ग्वारन ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, बोला बेटा ये जो कह रहे हैं वो भाषा मोहे तो क्या ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आवे, ये तो ब्रह्मा भी समझ नहीं सकेगा कि वो क्या बोल रहा है। तो बोला फिर आप इतनी आनंद से कैसे सुन रहे हो, यहाँ पर बैठे हुए हो इतनी सुंदर और आनंद लेकर आप इस कथा को कैसे सुन रहे हो? तभी पता है क्या बोला, बोला कि मुझे ये नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, परंतु मुझे इतना पता है कि मेरे प्रीतम की कोई बात हो रही है और मेरे प्रीतम कृष्ण का नाम है, इसलिए मैं उसी नाम को बार बार सुनकर आनंदित हो रही हूँ, बाकी वो क्या कह रहा है वो मुझे समझ में नहीं आता। तो ना आए समझ में, परंतु फिर भी ये कथा ही है, एकमात्र कथा का आश्रय ही हमारे पास है जिससे हम भगवान के निकट जा सकते हैं। और हमारे लिए तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सरल कर दिया है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड भर में गंगा नदी को विस्तारित कर दिया जिससे हर व्यक्ति उस पवित्र नदी में स्नान करके पग पग पर होने वाले पापों के फलों से छुटकारा पा सकता है। संसार में ऐसी अनेक नदियां हैं जिनमें स्नान करने से ही ईश चेतना का भाव जागृत होता है, और ऐसी नदियों में गंगा नदी प्रमुख है। भारत में 5 पवित्र नदियां हैं, किंतु गंगा सर्वाधिक पवित्र है। गंगा नदी तथा भगवत गीता मानव हेतु दिव्य सुख की प्रमुख स्रोत्र है, और बुद्धिमान लोग भगवत धाम वापस जाने के लिए उनकी शरण ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ तक कि श्री शंकराचार्य जी ने भी यह संस्तुति की है कि भगवत गीता का थोड़ा सा ज्ञान तथा गंगा जल का थोड़ा सा जलपान मनुष्य को यमराज के दंड से बचा सकता है। श्रील प्रभुपाद की। और ये तो भक्तों प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गंगा जो कि भगवान के चरण कमलों से निकली है, वो करोड़ों करोड़ों वर्षों से समस्त जीवों के पापों को नाश कर रही है। फिर ये तो गीता जो कि भगवान के मुख से निकली है, यदि कोई इस गीता का पान करेगा तो कैसे नहीं उसके अपराध नष्ट होंगे, हृदय कैसे पवित्र नहीं होगा और भगवान कैसे नहीं हृदय के अंदर आएंगे। उसके बाद देवता भगवान से कहते हैं, यच्छत्तया शुद्धवत्या च भक्त्या समृच्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरो जपीठम् यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृच्यमाने हृदये हृदये वदाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरो जपीठम् शब्दात् यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या। यत् श्रद्धया, यत् मना वह जो श्रद्धया अर्थात उत्सुकता पूर्वक श्रुतवत्या केवल सुनने से च भी भक्त्या भक्ति से समृज्यमाने अर्थात धुलकर हृदय यानी हृदय में अवधाय ध्यान ज्ञानेन ज्ञान से वैराग्य विरक्ति से बलेन बल से धीरा शांत व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रि सरोज पीठम। व्रजेम अर्थात जानना चाहिए, तत्ते तत्मना उस ते मना तुम्हारे अंग्री यानी पांव चरण सरोज पीठम कमल पुण्यालय। अनुवाद, देवता भगवान से कहते हैं, आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अतएव हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी सुखदेव गोस्वामी एक बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। देवतागण क्या कह रहे हैं, यत् श्रद्धया श्रुवता श्रुतवत्या च भक्त्या। खाली बस भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई श्रवण करता है भक्ति के साथ उत्साह के साथ, और सबसे सुंदर बात है श्रद्धया श्रद्धा के साथ। कि भगवान के चरण कमल ही मेरे जीवन को उसकी वास्तविक गति प्रदान करेंगे। कृष्ण के चरण कमल ही समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारी भावां बुद्धि वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपतां न तेषां। समाश्रिता, सम मतलब पूरी तरह से, आश्रिता मतलब जिसने आश्रित रह दिया। पद पल्लव प्लवम, ये पद ये चरण तो उस कश्ती के समान है जो कि भावां बुद्धि वत्स पदम परम पदम, ये कश्ती में भी यदि कोई बैठकर बहुत ही तूफान वाले समुद्र को पार करने का प्रयास करेगा तो वो कश्ती उसको तूफानी हवा इधर उधर बहका कर लेके चली जाएगी। भगवान बताते इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तस्याम हरति प्रज्ञा वायुर नावम इवांबसा। परंतु भगवान के चरण कमल की नाव में जो कोई सवार होता है, भवाम बुद्धि वत्स पदम, ये भवसागर उसके लिए वत्स के खुर में बैठे हुए जमे हुए या जमा हुए पानी के सदृश हो जाता है। कोई वत्स जो गाय का छोटा सा बछड़ा होता है वो जब चलता है उसका खुर बनता है और उस खुर में जब पानी जमा हो जाता है उस समुद्र को उस पानी को खुर में जमा हुए पानी को लांगना तो कोई कठिन नहीं है। तो उसी तरह से जो भगवान के चरण कमलों की शरण को ग्रहण करता है उसके लिए भवसागर खुर में जमा हुए पानी के सदृश हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं यद श्रद्धया श्रवताम च भक्त्या, जो भक्ति के साथ श्रवण करता है किसको समृज्य माने हृदय वधाया, हृदय के साथ उसके जो अपराध हैं समृज्य माने वो धुल जाते हैं, और ज्ञाने न वैराग्य भले न धीरा, उस धीर व्यक्ति को वो शांत हो जाता है और उस मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है उसको, वैराग्य भी प्राप्त हो जाता है और व्रजेम तत्तेंग्र सरोज पीठम। तो वो देवतागण बोलते हम भी उन्हीं चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला प्रभुपाद जी कहते उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने के चमत्कार इतने महान होते हैं कि कोई अन्य विधि इनकी बराबरी नहीं कर सकती। भौतिकतावादी जनों के मन इतने व्यग्र रहते हैं कि उनके लिए निजी नियम प्रयासों द्वारा परम सत्य की खोज कर पाना प्राय असंभव होता है। अब यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बोलते बहुत सरल है ना, भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लो और उस शरण को ग्रहण करने के बाद चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं और इतने महान चमत्कार होते कि दूसरी कोई अन्य विधि उसकी बराबर नहीं कर सकती। बाकी जो भौतिकतावादी लोग होते हैं उनके मन इतने अशांत होते हैं कि उनके लिए निजी नियमित प्रयास द्वारा परम सत्य की खोज कर पाना प्राय असंभव है। भक्ति के अतिरिक्त, भगवान की चरण की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त बाकी जो भी प्रयास हैं उनके द्वारा भगवान को प्राप्त करना प्राय असंभव है। किंतु ऐसे भौतिकतावादी जन भी दिव्य नाम यश गुण इत्यादि के विषय में श्रवण के प्रति थोड़ी सी भी उत्सुकता से ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करने की अन्य सभी विधियों के को मात कर सकते हैं। यानी दूसरी विधियों से भगवान को तो प्राप्त नहीं किया जाता, किंतु यदि कोई भौतिकतावादी हो, कोई किसी भी मार्ग का मानने वाला हो, यदि भगवान के दिव्य नाम गुण यश इत्यादि के विषय में श्रवण करने के प्रति थोड़ी सी भी उसके मन में इच्छा उत्पन्न हो जाए, उत्सुकता उत्पन्न हो जाए, तो ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करने की अन्य सभी विधियों को मात कर सकते हैं। फिर उससे तो तुरंत ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भक्ति केवल इच्छा मात्र से जीव को अलंकृत कर देती है। भगवान को प्राप्त होने के बाद, भगवान की भक्ति प्राप्त होने के बाद क्या होगा वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना तो कोई साधक भी बता सकता है कि इश्क का एहसास भी इबादत से कम नहीं। केवल इच्छा उत्पन्न हो जाए कि मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है, अब मुझे भौतिक वस्तुओं का परित्याग करके कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है, उसी समय जीव जो है वो भौतिक आकर्षण से बहुत दूर निकल जाता है, उसका जीवन परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। अब ये अलग बात है कि कितना उसके अंदर उत्साह है, कितनी उत्सुकता के साथ वो आगे बढ़ रहा है। तो जितना जितना अधिक प्रयास होगा उतना उतना अधिक उसका रिजल्ट निकलेगा, और भक्ति मार्ग पर चलने का जो रिजल्ट है वो क्या है, जीव भौतिक आसक्ति से अनासक्त हो जाए, भौतिक जो वस्तु है उनके प्रति अनासक्त भाव से आगे बढ़े। और दूसरा, जैसे ही ज्ञान प्राप्त और जैसे ही भक्ति जीव करना शुरू कर देता है तो उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मेरा संबंध तो भगवान से है। तो ये ज्ञान उसे भौतिक वस्तुओं के आकर्षण को समाप्त करा देता है, क्योंकि उसे पता है ये भौतिक वस्तु और व्यक्ति तो केवल मेरे शरीर की मांग है, और मेरी मांग, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मेरी मांग, मेरा कल्याण, मेरा आनंद, मेरा लक्ष्य केवल कृष्ण है। तो फिर ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। इसी बात को समझा रहे हैं शिला प्रभुपाद जी, और कहते हैं बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के प्रति लिप्त रहता है, अतः वह अज्ञान में पड़ा रहता है। आत्मज्ञान का संवर्धन भौतिक अनुराग से वैराग्य उत्पन्न करा सकता है, और ऐसे वैराग्य के बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता। भौतिक भोग के लिए सबसे भयावह आसक्ति है यौन जीवन। यौन जीवन के प्रति आसक्त व्यक्ति को ज्ञान से विहीन समझना चाहिए, ज्ञान के पश्चात वैराग्य होना ही चाहिए। आत्म साक्षात्कार की यही विधि है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी इसी बात को समझा रहे हैं कि ये संसार में जो बद्ध जीव हैं वो देहात्म बुद्धि में होते हैं, हमेशा अपने आप को शरीर समझते हैं, इसलिए वो अज्ञान में पड़े रहते हैं, और आत्मज्ञान के संवर्धन भौतिक अनुराग से वैराग्य उत्पन्न करा सकता है। जब जीव को आत्मज्ञान हो जाता है, अपने विषय में पता चलता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, देहात्म बुद्धि से जब वो ऊपर उठता है फिर उसे भौतिक वस्तुओं से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और फिर क्या होता है, और ऐसे वैराग्य के बिना ज्ञान का कोई अर्थ ही नहीं। आपको पता हो कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, लेकिन फिर भी भौतिक वस्तुओं का आकर्षण बाकी है। और यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते भौतिक भोग के लिए सबसे भयावह आसक्ति यौन जीवन की है। सेक्सुअल डिजायर्स जब तक जीव की हृदय के अंदर असंतुष्टि पैदा करती है, और यौन जीवन के प्रति आसक्त व्यक्ति को ज्ञान से विहीन समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये सोचता है कि इंद्रिय तृप्ति ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, उसने अपने आप को जाना ही नहीं है, तो समझ ही नहीं पाया कि ये इंद्रियां चाहे उनको कितना ही आनंद प्रदान कर दिया जाए, ना कभी संतुष्ट होंगी, ना कभी हुई थी और ना ही हो रही है, और उससे बढ़कर ये कि ये जो इंद्रियों की मांग है वो मेरी मांग नहीं है। मैं आत्मा हूँ, तो इंद्रियों को उनकी विषय वस्तु को प्रदान करना तो अग्नि में ईंधन डालने के समस्या है। जिस तरह से अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि संतुष्ट नहीं होती, उसी प्रकार से इंद्रिय को भौतिक सुख देने से इंद्रिय कभी संतुष्ट नहीं होती, बल्कि और भी भड़कती रहती है। तो वो अज्ञानी है जो इंद्रियों को उनकी वासना पूरी करने के लिए वस्तु प्रदान करते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान के पश्चात वैराग्य होना ही चाहिए। आत्म साक्षात्कार की यही विधि है। आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान तथा वैराग्य अनिवार्य है। जब तक जीव को ज्ञान उत्पन्न नहीं हो जाता, और ज्ञान को कोई बहुत बहुत गहरी या बड़ी बात समझने की भूल मत कीजिएगा। ज्ञान तो केवल इतना है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा संबंध कृष्ण के साथ है, और मैं तभी आनंदित हो सकता हूँ जब मैं अपने उस टूटे हुए संबंध को पुनः निर्माण कर लूँ। ये ज्ञान है, और जब ये ज्ञान हो जाता है तो भौतिक समस्त वस्तुओं से वैराग्य उत्पन्न होना अनिवार्य है। और यदि कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की भक्ति करता है तो ये दोनों अनिवार्य तत्व तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं। इस संदर्भ में धीर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति व्यग्रता का कारण उपस्थित होने पर भी विक्षुब्ध नहीं होता वह धीर कहलाता है। बहुत सुंदर है कि इंद्रियों में इच्छा उत्पन्न हो जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति चिंतित नहीं होता, व्यग्र नहीं होता, तो वो धीर कहलाता है। जैसे भगवान बताते हैं 2.17 में, आपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यत्वत् तद्वत्कामायम् प्रविशन्ति यत्वत् तद्वत्कामायम् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जिस प्रकार नदियां समुद्र में आती रहती हैं, उसी प्रकार एक भौतिक जगत में जब तक जीव है तो इच्छाएं भी उत्पन्न होती रहती हैं। इच्छाएं तो आती रहती हैं, परंतु धीर प्रभु स शांति मापनोती न काम कामी। वो व्यक्ति धीर जो व्यग्र नहीं होता, असंतुष्ट नहीं होता और शांत रहता है, इच्छाओं के आने के बाद भी वो परेशान नहीं होता, चिंतित नहीं होता, शांत रहता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री यामुना आचार्य कहते हैं कि क्योंकि मेरा हृदय भगवान कृष्ण की भक्ति से अभिभूत हो चुका है, मैं यौन जीवन के विषय में सोच भी नहीं सकता, और यदि यौन का विचार मेरे मन में आता भी है तो मुझे तुरंत घृणा होने लगती है। भगवत भक्त भगवान के चरण कमलों का उत्सुकता पूर्वक ध्यान करने मात्र से उच्च स्थित धीर बन जाता है। यामुना आचार्य कहते हैं, यदवधि मम चेतः कृष्ण चरणारविंद नवनवरस दामन्यद्युत आसीन तदवधि वतनारि संगम स्मर्यमानम सृष्टु विकार मुख विकार। के जब से मैंने कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है तो मुझे नए नए रस का आस्वादन होता है, और इस रस के आस्वादन के बीच में यदि कभी मुझे सेक्सुअल डिजायर उत्पन्न भी हो जाती है तो मेरा मुंह विकारित हो जाता है और थूकने लगता हूं मैं ऐसी सोच पर, क्योंकि इतना आनंदित वो कृष्ण का स्मरण है, वो कृष्ण के चरण कमलों का आस्वादन है, उसके आनंद के निकट, तो ये भौतिक आनंद बहुत ही घृणाजनक है। घृणा आती है मुझे ऐसे सुख के बारे में सोचकर। आगे कहते हैं श्री प्रभुपाद जी के भक्ति में प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा का दिया जाना तथा भगवान के विषय में सुनने के विषय में उपदेशों का पालन करना निहित होता है। केवल भगवान की भक्ति करके जीव भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक के किसी प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए तो श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे, भक्ति में प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा का दिया जाना तथा भगवान के विषय में सुनने के उसके उपदेश का पालन करना निहित होता है। ऐसे प्रामाणिक गुरु को उससे नियमित रूप से भगवान के विषय में सुनने के बाद स्वीकार किया जाता है। ज्ञान तथा वैराग्य में उन्नति को भक्तगण वास्तविक अनुभव के रूप में देखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रामाणिक भक्त से सुनने की इस विधि की जोरदार संतुष्टि की है और इस विधि का पालन करते हुए मनुष्य अन्य सारी विधियों पर विजय प्राप्त करते हुए सर्वोच्च परिणाम तक पहुंच सकता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं श्रवण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल चाहे हम भक्ति में कितना ही आगे हो जाएं, लेकिन फिर भी किसी शुद्ध वैष्णव के चरणों में बैठकर भगवान की लीलाओं को श्रवण करने से जीव उतना जल्दी भगवान के चरण कमलों में अपने प्रेम को उत्पन्न करता है और किसी विधि से नहीं कर सकता। इसीलिए महाप्रभु ने भी बहुत ही जोरदार संस्तुति की है कि हमें जी भगवान के शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए। और जब कोई किसी को यह अवसर प्राप्त होता है कि भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, तो यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं घोषणा की है कि फिर वो अन्य सारी विधियों पर विजय प्राप्त करते हुए सर्वोच्च परिणाम तक पहुंच जाता है। फिर वो भगवान को बहुत सरलता से प्राप्त कर लेता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा। मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।